संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम का आश्रव अधिकार के मंगलाचरण के छंद पर कल अपन ने चर्चा की थी। आज गाथाएं शुरू होती हैं। इन गाथाओं में भी एक नई बात ऐसी है जिस पर सबका ध्यान आसानी से नहीं जाता। अभी अपन उसकी चर्चा करेंगे तब मैं बताऊंगा। पहले गाथा पढ़ते हैं। गाथा पढ़ने के पहले जो उत्थानिका लिखी आचार्य अमृतचंद देव ने, तत्र आश्रव स्वरूप अभिदधाति, अब आश्रव के स्वरूप को बताते हैं। अब आश्रव अधिकार में आश्रव का स्वरूप बताते हैं। दो गाथाएं हैं, मिच्छत्तम अभिरमणम कसाय जोगाय सन्न सन्नादु, नाना वर्णादीय ते दुःखमस्य कारणं मुहन्ति। विभाग करो देखो, ये जो गाथाएं हैं समय सार में और तत्वा सूत्र में जो सबसे बड़ा अंतर है वो इन गाथाओं में प्रकट होता है। तत्वा सूत्र में बंध के कारण पांच गिनाए हैं, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग। सूत्र है मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतुवा, और यहां चार गिनाए, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग। प्रमाद को छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया? यदि हम प्रमाद की थोड़ी गहराई में जाके विचार करें तो वो कषायों के अतिरिक्त क्या है? मिथ्यात्व कषायों के अतिरिक्त क्या है? गोमर सार में आपने 15 प्रकार के प्रमाद पढ़े होंगे, उनके 80 भिंग भंग भी पढ़े होंगे। पांच चीजों के मिक्सर का नाम प्रमाद है। पांच चीजें क्या? बिगहा, कहा, कहाया, इंद्रिय निद्दा, तहेव, प्रणय, ऐसा है ना। एक चार विकथाएं, चार कसाएं, पांच इंद्रियों की अधीनता और निद्रा और स्नेह, ये 15 चीजें मिलती हैं तो उस चूर्ण का नाम है प्रमाद। अब हम जो प्रमाद शब्द का आलस समझते हैं ना, वो यहां बिल्कुल नहीं है। उसका दूर का भी रिश्ता नहीं है, बल्कि एकदम उल्टा है। तो एकदम दौड़ दौड़ के काम करते हैं ना, एक मिनट शांति से नहीं बैठ सकते हैं, उनको हम बिल्कुल कहते हैं अप्रमादी। आलस नाम की तो इनको चीजें ही नहीं है, है ना। और जो हिलते नहीं है ना अपनी जगह से, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता, है ना। उनको हम सबसे बड़ा आलसी कहते हैं। और यहां कह रहे हैं कि सातवें गुणस्थान में बिल्कुल हिलते नहीं है, उपल खाद खुजावते, हिरण भी खाद खोजा जाए तो ऐसा नहीं होते, वे हैं निराल सी क्यों। और जे प्रवचन करने वाले, शास्त्र लिखने वाले, आहार को जाने वाले, ये सब मुनिराज हैं, आलसी को रखा गया। शास्त्र से प्रमत्त अवस्था में ये सारे काम होते हैं। शुद्ध भाव जो है सब प्रमत्त है, वो शुद्ध भाव है वो अप्रमत्त है। तो जगत के प्रमाद से इसका दूर का भी रिश्ता नहीं है, और यदि है तो उल्टा है। अभी कुंद कुंद ने क्यों अप्रमाद है, तो पांच चीजों का मिक्सर है ना, फिर इनके असली भंग बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं असली भंग, ये तो गोमर साहब पढ़ाने वाले बढ़ाएंगे आपको, थोड़ी सी मैं बताता हूं। थोड़ा सा तीन होते हैं तब तो तीन प्रकार है, उत्पाद व द्रव्यात्मक, तो उसके सात भंग बन जाते हैं, है ना। तीन चीजें हो जैसे हर, बहेरा और आंवला, तो उनके हमें चूर्ण बनाने हैं, तो कितने प्रकार के चूर्ण बन सकते हैं, समझे ना। तो सात प्रकार के चूर्ण बन सकते हैं, समझे ना। चूर्ण समझते हो, तो पुराने जमाने में अपन बोलते थे चून, आटे को क्या बोलते थे, चून चून नहीं बोलते, समझे ना। चून माने चूर्ण, जैसे आटे को अपन गेहूं को चूर्ण कर दिया वो चूर्ण कहलाता है। तो इनको मिला करके बनाओ तो एक तो बन जाएंगे तीन, एक अकेला हर का, एक बहेरे का और एक आंवले का, तीन चूर्ण तो एक बन गए, किसी से मिलाए नहीं, बस अलग अलग बांध दिए। फिर तीन बनेंगे दुसंयोगी, हर और बहेरे को मिलाओ, बहेरे और आंवले को मिलाओ, और हर और आंवले को मिलाओ, ऐसे तीन चूर्ण ये बन गए। और एक तीनों को मिला दो तो एक वो बन गया, ऐसे सात चूर्ण बनते हैं, आठवां नहीं बन सकता। इसलिए जैन धर्म में सप्तभंगी है, क्योंकि तत्स्मात् तत्त्वम् त्रयात्मकम्, तत्व त्रयात्मक है इसलिए भंग सात है। और ऐसा भी लिखा है कि अनंत भंगी है, अनंत भंगी भी है जैन दर्शन में, अकेली सप्तभंगी नहीं है क्या, अनंत भंगी भी है। तो अनंत भंगी कैसे बनेंगे, ये सात सूरन तो बन गए, अब इनके अनंत चूर्ण बन सकते हैं क्या, नहीं बोलो बबलू कैसे बनेंगे, कभी दौड़ धूप करने से काम नहीं चलेगा। देखो मात्रा में फर्क डालो, एक तोला आंवला, दो तोला बहेरा, चार तोला जो भी समझ लो, हर बहेरा आंवला, समझ ना। और ऐसी मात्रा बदलते जाओ तो अनंत बन जाएंगे, समझ गया। तो सात भंग हो गए, अनंत भंग हो गए। ऐसे अपने अनंत गुणों को पकड़ें, अनंत धर्मों को पकड़ें, तो एक एक धर्म के हिसाब से एक एक भंग बनता है, ऐसे ऐसे अनंत भंगी भी बनते हैं। एक जमाना ये था आज से 60-70 वर्ष पहले, कि जैनियों के आर्य समाजियों से बहुत वाद विवाद होते थे, है नहीं ना। एक एक थे आर्य समाजी, और वो हार गए थे तो वो दिगंबर जैन बन गए थे, फिर वो छुल्लक हो गए थे, छुल्लक चिदानंद उनका नाम था, मैंने उन्हें देखा है। तो वो जब वो जैनी नहीं बने थे उत्तमचंद जी, तब वो ये कहते थे कि कैसे निपटे इनसे, एक भंगी से तो निपट नहीं सकते। क्या 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 जरूरत थी साथ साथ भंगियों की। तो जैनियों ने क्या जवाब दिया था कि तुम लोगों ने इतना कूड़ा फैलाया है कि एक साफ नहीं कर सकता, इसलिए हमें सात सात लगाने पड़े, और ज्यादा फैलाओगे तो अनंत भंग लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे अब करो, ये तो तीन का हिसाब बताया मैंने, अब यहां पांच चीजें हैं, तो पांच चीजों के भंग बनाओगे तो यहां सात बने, और तीन से सिर्फ दो बनी तो उसमें 80 बन जाते हैं। कैसे बनाओगे? एक आध बना के बताओ। चार विकथा तहा कहाया, चार विकथाएं, चार कसाएं, चार पांच इंद्रियों की आधीनता, निद्रा और स्नेहान। तो अब एक मतलब मानो क्रोधी, फिर वो मन टकरा, फिर क्रोधी, फिर स्त्री कथा, स्त्री कथा लापी, फिर स्पर्श में इंद्री के बस में, और निद्रालु और स्नेहान, ऐसे एक बन गया। ऐसे ऐसे बनाते जाओगे तो 80 बन जाएंगे। क्यों? ये सब बैठे हैं करुणा नियोग वाले, सब सिर हिला रहे, कभी थोड़ा सा तो इनका भी हिलवाना चाहिए ना, है? क्यों? और फिर वैसे अनंत भी बन जाते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें मूल हिस्सा तो कसाय का ही है, इसमें मुनियों की अपेक्षा बात है ना, इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ दिया है, क्योंकि मुनियों के वो होता नहीं, प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान छठ में सात में भी चर्चा है ना इसकी, लेकिन वो वास्तव में प्रमाद में मिथ्यात्व भी प्रमाद है, तो मिथ्यात्व कसाय को छोड़ दो, तो ये पांच इंद्रियों की आधीनता भी यही तो है, कसाय में तो है ही, लोभ कसाय के अंतर्गत ही तो आती है, रति अरति कसाय के अंतर्गत ही तो आती है, हैं? ये विकथाएं हम बोलते हैं बदन की, इसमें क्या दम है? और नींद नींद और स्नेह स्नेह राग को जो कहते हैं, अरे 25 कसायों में से 13 कसाएं राग रूप तो है ही, इसलिए उन्होंने कुन्न कुंद ने उनको ज्यादा प्रमाद को ज्यादा वजन नहीं दिया, वो चार भेद किए। अब ऐसा समझ लोगे पांच और चार में कोई ये मतभेद नहीं है, एक ही बात है। अभी ये कहते हैं मिथ्यत्वम अभिरमणम कसाय योगाय सन्न सन्नादु, मिथ्यात्व अविरधि कसाय और योग, ये सन्न माने चेतन और असन्न माने अचेतन भी होते हैं। संगी और असंगी वो पंचेंद्रिय के भेद होते हैं, वो अलग है, वहां भी मन से वो संगी बोलते हैं, अचेतन अचेतन, जिसकी चेतना जागृत है इसलिए संगी, जिसकी चेतना सुप्त सी है उसे हम असंगी कह दिया, समझे ना, अपेक्षाकृत। लेकिन ये संग असंग माने चेतन अचेतन, मिथ्यात्व अविरति कसाय और योग, ये चेतन भी होते हैं और अचेतन भी होते हैं। इसका मतलब यह द्रव्य मिथ्यात्व अचेतन है, भाव मिथ्यात्व चेतन है, द्रव्य अवृत्ति अचेतन है, भाव अवृत्ति चेतन है, द्रव्य कषाय चेतन है अचेतन है, भाव कषाय चेतन है, और ऐसा योग द्रव्य योग अचेतन है और भाव योग चेतन है। तो ये संग भी होते हैं और असंग भी होते हैं, यानी आसद चार हैं और चारों मन आत्मा के विकार रूप भी हैं और पुद्गल के विकार रूप भी हैं, है ना। बहु भी भेया जीवे, अब इनके बहुत भी भेद कर सकते हैं, फिर इन संक्षेप में चार बता दिए, लेकिन तस्सैव अनन्य परिणामा, ये उस जो पुद्गल के हैं अजीव हैं वो पुद्गल के अनन्य परिणाम हैं, और जो जीव है वो जीव के अनन्य परिणाम है। अब अभी सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार सुन रहे आप, और साथ में व्यास अधिकार सुन रहे, तो कहेंगे अब भी हाल तो कह रहे जीव में है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, और अब कह रहे चेतन के अनन्य परिणाम है जीव के। तो देखो भैया अपेक्षा समझना ही पड़ेगी, जैन दर्शन में विभिन्न अपेक्षाओं से कथन होता है, उन अपेक्षाओं का विभिन्न अलग अलग प्रयोजन होते हैं, तो जहां जो प्रकरण हुए वो समझना। गुरुदेव श्री श्रीमद का एक वाक्य बार बार बोलते थे कि जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझ वो ते आत्मार्थ, जहां जहां ते आचरे आत्मार्थी जनते, वो आत्मार्थी है। मैं कभी कभी कहता हूं कि जैन धर्म में जितनी बात तत्व समझने में मरिया से बढ़िया है, उससे ज्यादा लड़ने के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि बिल्कुल परस्पर विरुद्ध बात कथन बहुत मिलते हैं आगम में, तो खोल खोल के निकाल निकाल के बताओ जनता को, जैसी है तो है, अब उसे मूर्ख तो मैं कह नहीं सकता हूं, बस अरे हाँ ये भी लिखा, ये भी लिखा साथ में, ये भी लिखा, ये भी पढ़ने जीने दे रहे हैं। मैं ये घटना आपको सुनाऊंगा, आपको बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन बिल्कुल परम सत्य है। महासमिति की मीटिंग थी साहू जी के घर पर दिल्ली में, जयपुर भाई, हम और गोदगा जी गए थे, तो वहां ठहरे, तो मैं बताऊं, उन्होंने बात्सल्य भाव तो इतना अधिक था कि हमारी गाड़ी में पीछे से उनने पेट्रोल भरा के टंकी फुल कर दी थी। हम तो समझते थे कि लौट के जाएंगे तो हमें पेट्रोल भराना पड़ेगा, लेकिन टंकी फुल मिली। अब अंदर हम बैठे थे मीटिंग बाहर होने के पहले ही, तो एकदम गर्म हो गए थे साहू जी, तुम लोग क्या करते हो, समझ में नहीं आता, ऐसा होता ये होता वो होता, अब क्या क्या हो, क्या ज्ञान हुई, क्या बात हो गई बने उसे। बोले आप लोग कहते थे कि व्यवहार न है या निश्चय नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है, लाल बहादुर शास्त्री आए थे और उन्होंने बताया था कि व्यवहार में दो होते हैं, सद्भूत और असद्भूत। तुमने धोखे में रखा, वो सद्भूत सच्चा होता है, असद्भूत होता है, वो बहुत बड़बड़ाता है, बहुत बड़बड़ाता है। अब गोदगा जी कहना सुनो तो, लेकिन सुना ही नहीं। मेरी समझ में आ गया कि इनको वो एक के दो हो गए ना, इसलिए वो बड़ा पंडित हो गया, अपन छोटे पंडित रह गए। तो मैंने कहा कि नहीं साहब, आपको पता नहीं, विवाह में चार होते हैं। क्या कहते हैं? और मैंने चार गिनाए और थोड़े संक्षेप में समझाए, तो भाजी फिर पलट गई। तो मेरे पिताजी जो मुझे कहानी सुनाया करते थे वो मुझे याद आई। क्या क्या एक पंडित बाहर का आया, बेचारा गांव का पंडित था, तो वो सब बताता समझाता था, ख्याल में है ना। तो उसने चार वेद बताए थे अपने गांव वालों को, उन्हें चार मालूम थे, बाहर का पंडित आया अगर कुछ नहीं समझता। अरे वेद होंगे तो वेदनी होंगी कि नहीं होंगी, तो आठ होते थे। यहां वेद होंगे तो वेदनी क्यों नहीं होंगी, इस पंडित ने तो हमें धोखे में रखा आज तक। क्यों? अब चला गया बेचारा गांव के पंडित की इज्जत खराब हो गई, प्रवचन करना बंद हो गया, सब धंधा पानी चौपट हो गया। फिर दूसरा कोई आदमी आया तो उसने अपनी संकट बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, अरे चिंता मत करो मैं सब ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि कौन कहता है आठ होते हैं, अरे वेद होंगे वेदनी होंगी तो बाल बच्चे नहीं होंगे। क्या तुम एक समाज की सचमुच जो टॉप के नेता थे, क्या उनकी ये पोजीशन है, तब तक सब ऐसा चलेगा। जो गहरे से शुद्ध स्वाध्याय नहीं करेंगे तो वो सचमुच कभी पार होने वाले नहीं है इस संसार समुद्र से, क्योंकि सच्चा देव तो अभी है नहीं, है ना। नेकोर गुरु यश वितः प्रमाणम है, आता क्या नहीं आता। अब एक जिनवाणी ही परम शरण है जो उत्तम जी ने आपको बताई थी, यही है एकमात्र, और नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन अंत तो गत्वा तो यही है। सकृतन जी 24 घंटा आपके साथ कोई नहीं बैठ सकता, अगर अपने भरोसे ही अपना काम करना पड़ेगा। ये जैन दर्शन की खास बात है, ये सब मुमुक्षुओं को ध्यान रखना चाहिए, और मुमुक्षुओं की यही सबसे बड़ी विशेषता है सारी समाज में, कि वो सब स्वाध्याय करते हैं और बाकी के लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं। ये जो अंतर है, ये अंतर कभी मिटने मत देना, ये अंतर मिटा और हम मिट जाएंगे, ये अंतर नहीं मिटा तो हम रहेंगे। तो अभी तो अपन ये बात कर रहे हैं कि चारों ये क्या है, मिथ्या प्रवृत्ति योग और कसा, ये चेतन भी है अचेतन है, चित्त रूप है, इसलिए चैतन्य के ही परिणाम है, माने अब और ज्ञानावरण आदि जो अचेतन है वे कर्म के कारण बनते हैं, और उनका कारण भी यह अभागादि कारक जीव बनता है। अब जरा थोड़ी विचित्र बात है, एक बात मैं आपको इसको पढ़ने के पहले बता देता हूं तो आपको समझने में सुविधा रहेगी क्या विशेषता इस गाथा की। अभी अपन ये समझते रहे हैं आज तक कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, माना अपने मोह राग द्वेष के निमित्त से इस द्रव्य कर्म बंधते हैं और द्रव्य कर्म का उदय आता है तो हमें भाव होते हैं। एक तो मैंने इतनी बात तो कल स्पष्ट कर दी थी कि सात कर्म के उदय का हमारा कोई झंझट नहीं है, वो तो निसंतान ही मरने वाले हैं, हमारी भविष्य की को बंधन के कारण नहीं है। अब ये मोहिनी कर्म के उदय से जो मिथ्यात्व और कसाएं हैं पर यही है इनका चक्कर है। अब ये कहते हैं गाना बरना अजीब, हमने मोह राग द्वेष किए माने मिथ्यात्व और कसाएं की, मोह राग द्वेष में तीनों चीजें आ जाती हैं, है ना, तो गारंटी से द्रव्य कर्म बनेंगे। और हम क्या मानते हैं, जो उनके निमित्त कौन है, मतलब ये भाव कर्म आगामी द्रव्य कर्म बनने के निमित्त हैं, है ना, और आत्मा के साथ वो एक मेक हो जाते हैं और बन जाते हैं। ये अपन ने प्रदेश बंध की परिभाषा रट रखी है, पढ़ रखी है ना, और फिर उनका उदय आएगा कौन का, मिथ्यात्व का और कसायों का, तो रागादि हो जाएंगे। वो द्रव्य कर्म का उदय आया, द्रव्य मिथ्यात्व का और द्रव्य कसाय का, ये कसाएं जो आप समझती हैं, जो हमने गुस्सा मुस्सा किया, यही कसाएं नहीं है, कर्मों की प्रकृतियों में भी एक कसाएं हैं जिसके उदय के निमित्त पाकर आत्मा में कसाएं होती हैं। मतलब उद्गल में भी कसाएं हैं, मतलब ऐसी कसाएं नहीं जैसी तुम में है, ऐसे कर्म के कुछ परमाणु हैं कि जो बनते हैं और उदय में आते हैं तो आत्मा में विकार होता है, उसे पौद्गलिक क्रोध कहते हैं, उसे पौद्गलिक मिथ्या तो पौद्गलिक हास, ये 25 कसाओं के ऐसे अंदर अंदर पुद्गल के बने हुए भी हैं। ये तो एक जनरल मान्यता है। अब यहां इसके विरुद्ध एक बात कह रहे हैं, वो बात आप समझानी है मुझे, वो समझा दी तो समझ लो एक गाथाएं समझ में आ गई। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ये धोखा है कि आत्मा के प्रदेशों से कर्म आगे बनते हैं, ये नए कर्म तो जो पुराने कर्म का यहाँ कर्म शरीर है ना, कर्मण शरीर पिंड, उनसे बनते हैं। ये एक नई बात नहीं हो गई क्या, तो घबराना नहीं, वो भी लिखी है शास्त्र में लिखी है, आत्मा के प्रदेशों के साथ एक में एक होना वो बंधन रूप, लेकिन मैं सब यहाँ है जो बात है वो बता रहा हूँ, उसका खंडन करके तुम्हें समझना मैं उसका विरोधी हूँ, तुम ईमानदारी से समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक दृढ़ता से कोई बात नहीं कहेंगे तब वो गले उतरती नहीं है। क्या हुआ, क्या कर रहे हैं कि वो जो नए कर्म आएंगे कारमान बगणाएं, वो पुरानी कारमान बगणाओं का जो कर्म रूप प्रणमन हमारा कारमान शरीर है ये उससे बंधेंगी, क्योंकि बंधने के लिए स्पर्श गुण चाहिए और आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है, तो आत्मा से कैसे बन सकती है। देखो सिद्ध भगवान के लिए भी कितनी बार कारमान बगणाएं आती हैं और बंधती नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां कारमान शरीर का संयोग नहीं है, काय से बने, जीव से तो बंध ही नहीं सकती है, वहां खूंटा नहीं है, बने काय से, समझिए ना, आत्मा के प्रदेश में तो स्पर्श नाम का गुण है ही नहीं, इसी तो अवध स्पष्ट है वो, जब कोई जब छूता ही नहीं किसी को तो बनेगा कैसे, तो सिद्ध भगवान के कोई कारमान शरीर रहा नहीं है, इसलिए वो बने, लेकिन कारमान शरीर से आगे बनती है, एक बात तो नहीं है, जो आत्मा के साथ बंधने की बात है पीयूष, वो तो सिर्फ इतनी है कि एक क्षेत्र आप गाय तो एक निश्चित काल तक एक क्षेत्र में रहेंगे, सिर्फ इतनी सी बात है, जो बंधे बंधे बिल्कुल नहीं है क्या, एक। अब दूसरी बात इसमें एक नई और है, वो कहते हैं नए कर्म के बंधने में जो निमित्त है वो पुराने पौद्गलिक कर्मों का उदय है, ये लिखा है इसमें गाथा में। वो जीव को हटा दिया बिल्कुल, जीव में जो राग होता है वो कर्म के उदय से नहीं होता, वो जीव की पर्यागत योग्यता के कारण होता है। वो क्षण उपादान नंबर दो क्या, इस तथ्य को इन गाथाओं में समेटा गया है। अब वो आचार्य कुंद कुंद और रम्यचंद, वो जो जगत प्रसिद्ध जो मार्ग है जो हमें और आपने समझा है, वो भी पहले शास्त्रों में से ही समझा है, वो भी दिग्गज आचार्यों का ही लिखा हुआ है और अन्य इन्हीं आचार्यों ने भी लिखा है। तो मामला मेरे कहने का मतलब है किसी अज्ञानी और ज्ञानी के बीच का नहीं है, समझ गए ना मामला, कि किसी की हम उपेक्षा कर सकें। तो दोनों की अब ये समस्या है कि क्या करें, ये क्यों कर क्यों रहे, क्यों कि हमें भेद विज्ञान का शास्त्र है और हमें हर अध्याय में भेद विज्ञान सिखाना है। जीवाजीवाधिकार में अजीव से भेद विज्ञान कराया, कर्ता कर्म अधिकार में उसका कर्ता भोक्ता का निषेध किया, पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप से भेद विज्ञान कराया, और यहां आश्रय भाव से भेद विज्ञान कराना है। अब आश्रय से भेद विज्ञान कराना है ना, तो अभी फिर देखे जीव के अनन्य परिणाम है वे, तो उनसे भी वो कर्म के माने तो भिन्नता कैसे, पहले पौद्गलिक आश्रय कर्मों से तो भिन्नता कर ले, पौद्गलिक जो आश्रम है उनसे तो भिन्नता सिद्ध कर ले, फिर ये रागादिक से करेंगे, ये तो अनन्य परिणाम कह दिया। अनन्य क्यों कह रहे हैं, यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी इन्हें अनन्य कहने की, वहां तो ये कह रहे थे देखो कर्ता कर्म अधिकार में, जाबण बेदी विशेष परंतु आधा सवाण दौपी सावजिशो अज्ञानी, है ना, कि जब तक आत्मा और आश्रय भावों का भेद नहीं जानेगा तो अज्ञानी रहेगा। और वहां दृढ़ाश्रय की बात नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्यों नहीं थी बोलो, क्योंकि उसके पहले जो मंगलाचरण है उन गाथाओं के पहले उसमें लिखा है एको कर्ता चिदेह में कर्म कोपादयोमी, कर्म ज्ञाना वर्णादि दयोमी नहीं लिखा। जब द्रव्य कर्म की बात होती है तो ज्ञाना वर्णादि ऐसा बोला जाता है, ज्ञाना वर्ण को मुख करके आदि में बाकी लिए जाते हैं, और जब भाव कर्म की बात होती है तो क्रोध को लिया जाता है और क्रोधादि कहा जाता है। तो वहां आश्रम भाव में क्या लिखा, एको कर्ता चिदेह में और कर्म को पादयोमी, इतक ज्ञानम ये अज्ञान, मैं चैतन्य आत्मा करता हूं और क्रोधादिक मेरे कर्म है, ये अज्ञान है। माने वहां पर रागादिक भाव से भेद विज्ञान कराया है, आश्रम भाव में रागादिक भाव की मुख्यता है, आगे की गाथाओं में द्रव्य कर्मों से भी कराया है और नो कर्मों से भी कराया है। लेकिन यहाँ पहले ही बात तो उन्होंने यहां से शुरू की जो जीव के अनन्य परिणाम है। अब जीव के जो अनन्य परिणाम है, अब उनकी ये बात यहां पर चल रही है। देखो अभी ये रिश्ता जोड़ना तो पड़ेगा भाई साहब, दो बातें चलेंगी नहीं, कौन सी दो बातें सिकंदर जी साहब, कौन सी दो बातें हैं, कि हमारे पुराने द्रव्य कर्म के उदय से नए द्रव्य कर्म बनते हैं, कि हमारे मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से द्रव्य कर्म बनते हैं। दो झगड़ा हो गया ना, क्योंकि हम अभी तक ये समझते रहे और ग्रंथों के अध्ययन से कि हमारे मोह राग द्वेष के भावों से द्रव्य कर्म बनते हैं, और यहाँ ये कह रहे हैं कि कैसे बनते हैं, पुराने कर्मों के उदय नए द्रव्य कर्मों के बांधने में निमित्त हैं। ये झगड़ा है। ये मैंने लिखते वक्त भी बहुत खोला है, इसमें कोशिश की है, इसमें मैं रखा इस गाथाओं पर मैंने 8 पेज लिखे हैं इस समय सार अनुशीलन में, और गुरुदेव को कोट किया है, जयसेन को कोट किया है, जयचंद को कोट किया है, सबको ला करके मैंने प्रस्तुत किया है कि देखो किन किन ने क्या क्या भाव इसको खोला है। इतना खोलने के बाद भी हम अधिकांश लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता, अपने अपने मन के अंदर सोच लेना ये बात हमारे ख्याल में अभी तक ठीक नहीं थी, उससे अंदाज लगा लेना। अब लिखित रूप में तो सब मौजूद है, गुरुदेव में भी मौजूद है, जयसेन में भी मौजूद है, अमृतचंद में भी मौजूद है, जयचंद में भी मौजूद है, अपन ने भी लिखी है, सब हो गया है। क्यों? इसके हिसाब से बोला भी है, अपने प्रवचनों में भी मौजूद है, लेकिन ध्यान जाने की बात है। तो ध्यान जाने की बात ऐसी है कि अब इसलिए जो मैं इतनी प्रेरणा दे रहा हूं ना, नहीं तो अभी भी वैसे ही निकल जाएगा। क्या अभी भी एक ऐसा है वैसे ही निकल जाएंगे। देखो वो क्या कहते हैं, देखो मैं टीका पढ़ता हूं तो आपको आनंद आएगा। अपने परिणामों के निमित्त से होने वाले मोह राग देश रूप आश्रव भाव जड़ नहीं है, चिदाभास है, चैतन्य के ही विकार हैं। अब एकदम उल्टी बात आ रही ना उत्तम चंद जी से। अब ये मतलब ना मेरी उत्तम चंद जी के ऐसे में कुछ नहीं है, है? लड़ना झगड़ना हो तो कुंद कुंद से उनसे लड़ना है ना, देखा ना। अपने परिणाम आप फिर सुनो, मुझे राग देश भाव कर्म के उदय से हुए नहीं कह रहे, अपने परिणामों के निमित्त से होने वाले मुहे राग देश रूप आश्रव भाव माने चेतन चेतन रूप आश्रव भाव जड़ नहीं है, चिदावास है, चैतन्य के ही विकार हैं। पहला संस्कृत देखना हो तो देखो, राग देश मोहा आश्रवा यही जीवे स्वपरिणाम निमित्ता अजड़त्व सती चिदावासा। संस्कृत बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। यहां हमारा समय ये पढ़ाई जाती है तो शांति जी एक ऐसा ऐसी पंक्ति पंक्ति से पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, अच्छी तरह तैयार कराते हैं। मैं भी सुनता हूँ, हर साल सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई कितनी पकड़ हो गई है इस पर, और विद्यार्थियों को कितनी गहराई से पकड़ते हैं। देखो मिथ्यात्व अग्रति कषाय और योग ये पुद्गल परिणाम ज्ञाना वर्णादि पुद्गल कर्म के आश्रमण में निमित्त होने से अब्बास्तम में आश्रम है। क्या कह रहे समझ में नहीं आता क्या कहते हैं? अभी तो इनको कह दिया चिदविकार को आश्रम है, अब इनको कह रहे कि वास्तव में आश्रम। तो जे मिथ्यात अवृद्धि कसावरी ये कौन? अब ये पुद्गल परिणाम, अब राघा जी को पुद्गल परिणाम कहा है वो बात यहां नहीं है। अभी जो है ज्ञान क्यों ये पुद्गल परिणाम, ये जो ज्ञानावरणादि की बात है, पुद्गल कर्म के आश्रवण में निमित्त होने से वास्तव में आश्रम है। संस्कृत पढ़ो, मिथ्या अवृत्ति कसा योगा पुद्गल परिणामा ज्ञाना वर्णादि पुद्गल कर्म आश्रमण निमित्तत्वात् किल आश्रवा। ये वास्तव में किल का अर्थ किया है, एक एक शब्द का अर्थ किया है पंक्ति पंक्ति से। दो चीजें खड़ी हो गई और उन मिथ्यात्वादि पुद्गल परिणामों के आश्रवण में निमित्तत्व के निमित्त राग देश मोह हैं, जो कि अज्ञानमय आत्म परिणाम ही हैं। अब उनको आश्रव कर्म के आश्रव का निमित्त नहीं माना, क्या कहा? निमित्तत्व के निमित्त। अब ये शब्द नहीं कोई ध्यान देता है कि निमित्तत्व का निमित्त क्या है। और देखो उन टीका में पहले में ऐसी स्पष्ट भाषा में मैंने बहुत खड़ी कर दी, यानी पुरानी भाषा है ना, होने से 250 वर्ष पुरानी भाषा ही नहीं थी, मतलब इतनी व्यवस्थित भाषा ही नहीं थी कि पंडित जो थे ना राजमिल जी कलस्टिका वाले, तो इतने बड़े विद्वान थे भाषा के कि आप उन्हें कल्पना नहीं कर सकते। संस्कृत की पंचाध्यायी देखो, ऐसा प्रवाह गंगा नदी जैसा बहता कल 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 जैसे गद्य पढ़ रहे हो, इतना बढ़िया पद्य देखने में नहीं मिलता कि कम से कम न्याय शास्त्र में, काव्य में तो मिलेगा है ना। इतने बड़े विद्वान होने पर जो है सो है लिखते लिखते कलस्टिका में क्या करे, हिंदी ही नहीं थी। सबसे पहली कलस्टिका की हिंदी, हिंदी साहित्य में सबसे पहला गद्य है, मैंने सिद्ध किया है। एक लेख लिखा था 17 पेज का और यूनिवर्सिटी में छपा था के फाउंडर हैं कौन, पांडे राजमल जी और पंडित टोडरम मल जी हिंदी गद्य के को परमार्जित गद्य के सबसे पहले विद्वान हैं। कैसे सिद्ध किया कि उस वक्त के सारे हिंदी साहित्य के नकाले बताओ कहाँ कहाँ है ये हिंदी गद्य, तो मालूम क्या मिलता है, 84 वैष्णवों की वार्ता अथवा वे पत्र जो बनिए लोग गिरवी रखते थे ना सोना चांदी, उसके बदले में पैसा देते थे, उसके लिए लिखते थे, पर वे चिट्ठियां मिली और कुछ नहीं मिला। पर वो 84 वैष्णवों की वार्ता है और 252 वैष्णवों की वार्ता, तो वो भी ऐसी है कि भगवान ही मालिक है, उसे कौन समझ नहीं सकता। तो देख कलश टीका का गद्य उनसे पहले का है और उनसे बढ़िया परमार्जित है, भाषा ही नहीं थी वे क्या करते। और टोडरमल जी के जमाने का गद्य देखो और पूरे हिंदी साहित्य में इतना परमार्जित गद्य कहीं नहीं है। तो बनारसी दास का आत्मकथा के क्षेत्र में, राजमल जी का गद्य के क्षेत्र में, और टोडरमल जी का परमार्जित गद्य के क्षेत्र में सबसे टॉप पर स्थान है हिंदी साहित्य में। ये मैंने अपने शोध प्रबंध में सब सिद्ध किए हैं और इसे अलग से लेख भी लिखा था। अब अपने जो मुख्य समाज में वो क्यों नहीं चला, क्योंकि मुख्य समाज को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या गद्य होता है, क्या भाषा होती है, कब से चली कैसे करी, अपन सोच ही नहीं सकते हैं कि हिंदी का गद्य असली गद्य जो है उसकी 100-150-200 वर्ष से ज्यादा उम्र नहीं है। हिंदी साहित्य की पद्य की भी 1000 वर्ष से ज्यादा उम्र नहीं है। 1000 वर्ष पहले पृथ्वीराज राजा मिलते हैं, ये हैं, उससे पहले अपभ्रंश चलती थी उन भाषाओं में है। तो अभी ये बात ये चल रही है यहाँ पर अपने कि मैं सब बताऊंगा। अब ये निमित्त तत्व का निमित्त असली ये है, ये निमित्त तत्व का निमित्त क्या है पहले जरा अपन पढ़ लेते हैं, क्यों फिर अपन इसकी व्याख्या करेंगे। मेरे ख्याल से पढ़ लेंगे और इतना मैंने बता दिया तो पढ़ने से ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं शांति से मैं पढ़ रहा हूं, आप देखना। मिथ्यात्व अवृत्ति कषाय और योग, ये पुद्गल परिणाम ज्ञाना वर्णादि पुद्गल कर्म के आवरण आश्रमण में निमित्त होने से वास्तव में आश्रम है और उन मिथ्यात्वादि पुद्गल परिणामों के आश्रमण के निमित्तत्व के निमित्त राग देश मोह है। राग देश मोह निमित्त नहीं है, उनके निमित्त तत्व के निमित्त हैं। अब ये निमित्त तत्व का निमित्त क्या होता है, ये नई बात है ना, इसमें तो लिखी है, जो संस्कृत में लिखी है पढ़ो। आश्रमण अज्ञान मय परिणाम आश्रमण निमित्त तत्व निमित्तम लिखा क्या नहीं लिखा, संस्कृत में है क्या नहीं है, मेरे कहने का मतलब इसमें तो है। वे कह रहे हैं इसमें से सारा मोक्ष मार्ग खुलता है। देखो अब मैं कह रहा हूं, देखो ऐसा ना, कर्म का उदय आया तो संयोग उसके अनुसार मिलेंगे, उसमें आप कोई फेरफार नहीं कर सकते। कल मैं बता चुका उसमें माथा मारना बिल्कुल व्यर्थ है। जिस संयोग को आदिनाथ जैसे, भरत चक्रवर्ती जैसे, बाहुबली जैसे भी यहां से यहां हिला नहीं सके, हम क्या कर सकते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि वो जो कर्म का उदय पुराना और नए कर्म का बंधना, ये ऐसा सीधा संभव नहीं है। क्यों कि यदि आत्मा में राग नहीं हो तो नहीं बनेंगे। तो वे निमित्त कब बनेंगे कि आत्मा में मोह राग द्वेष होंगे तो निमित्त बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो इसलिए राग द्वेष मोह उनको निमित्तत्व माने निमित्त बनाने के निमित्त हैं, समझे दादा है? यानी उन्हें वो निमित्त कहलाए, क्योंकि मोह राग द्वेष नहीं होते तो वे निमित्त नहीं होते। आप कहते मैंने बहुत कोशिश की उनकी लड़का लड़की की शादी कराने की, बहुत मैंने मिलाया, मेहनत बहुत की, निमित्त तो निमित्त ही तो हो, उपादान तो नहीं, तुम्हारी तो नहीं भाई शादी, हाँ हूं तो निमित्त ही, लेकिन भैया तुम निमित्तत्व के निमित्त कौन है? कि उनने शादी करी तो तुम निमित्त कहलाए, और नहीं करते तो तुम्हारी मेहनत सब पानी में जाती, तुम निमित्त भी नहीं कहलाते। क्योंकि कार्य हो उसका निमित्त होता है ना, समझ रहे ना, और कार्य नहीं हुआ तो काय के निमित्त, बोलो तो निमित्तत्व के निमित्त का समझ में आई ना। यदि वो आत्मा में मोहराग देश का परिणाम नहीं होता तो पुराना कर्म का उदय आता और खिर जाता और नया कर्म नहीं बनता। इसलिए भी राग देश मोह वो औद्गलिक कर्म के निमित्तत्व के निमित्त हैं सब, इसलिए उन्हें निमित्त माना गया। क्योंकि उन कर्मों को आगे उनसे ही तो बंधना है, बांधे तो उनने हैं, उनने मिलाए तो उनने अपने में हैं। पानी को दूध में मिलना है, तुम में थोड़ी मिलना है। वो ग्वाले ने पैसे के लोभ में क्यों पानी में दूध में पानी मिलाया, तो कौन वो ग्वाला निमित्त है? वो कहते वो मिलाया तो दूध में पानी को अपने में है। समझ गए, बनना तो दूध से है, होना तो दूध से, अपन तो उसे उपादान में क्या क्या निमित्त देते हैं। तब के निमित्त क्यों कह रहे कि दो ही पौधगलिक हैं तो उपादान क्या? भैया दो पौधगलिक तो हैं, लेकिन दो पुद्गल भी तो अलग अलग हैं, और परद्रव तो निमित्त होता है, उपादान क्या होता है? आई समझ में बात क्या नहीं? क्या भैया क्या कह रहा हूँ? तुम कहते पुद्गल में पुद्गल मिल गया तो उपादान से ही काम हो गया, निमित्त की क्या जरूरत रहेगी? लेकिन दो पुद्गल एक नहीं है, वे दो है, तो दूसरा द्रव्य तो निमित्त होता है। उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर हो, पर उपादान नहीं बन सकता उस और निज निमित्त असल है ना, तो वो दुख है ना, तो वो पुराने कर्म का उदय है निमित्त, और नए कर्म का बंधन है नैमित्त कार्य, और उसको निमित्त बनाने का कारण है आत्मा में उत्पन्न होने वाला मोह रोग, तो वही उसके निमित्तत्व का निमित्त हुआ। ये आप समझना है, अब पढ़ता हूँ थोड़ा घर पे भी माथा मारना। मिथ्या प्रवृत्ति कसाय और योग, ये पुद्गल परिणाम ज्ञाना वर्णादि पुद्गल कर्म के आश्रमण में निमित्त होने से वास्तव में आश्रम है, और उन मिथ्यात्वादि पुद्गल परिणामों के आश्रवण के निमित्तत्व के निमित्त राग द्वेष मोह है, जो कि अज्ञानमय आत्मा के आत्म परिणाम ही है। इसलिए मिथ्यात्वादि उद्गल परिणामों के आश्रवण के निमित्तत्व के निमित्तभूत, अभी कितनी भाषा समझ में आई ना, होने से राग द्वेष मोह ही आश्रव है। अब बुद्धिभाषा को तो वास्तव में कह रहे और यहाँ ही लगा दे, अब क्या हुई? ये है माने ये है, वे नहीं है, ही लगाते ही तो ऐसा हो जाता है, नहीं है। अब ही और वे दो ही जगह लगा दी, वे वास्तव में निमित्त है और यहाँ ही लगा दी, क्योंकि ही दृढ़ता के लिए लगाई। ये राग देश मोह अज्ञानी के ही होते हैं, फिर ही लगा दी, ये ज्ञानी के होते ही नहीं। अज्ञानी के राग देश मोह तो राग तो दसवें गुण स्थान तक होता है, तो अब ये राग देश मोह है जो मिथ्यात्व के साथ अनंतानबंदी है, इनको यहाँ राग देश मोह कह रहे, बाकी को राग देश मोह ही नहीं गिन रहे, अज्ञानी के ही होते हैं। यह बात उक्त कथन के अर्थ से ही स्पष्ट हो जाती है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि मूल गाथाओं में यह बात स्पष्ट शब्दों में नहीं कही गई है, तथापि गाथाओं के अर्थ में से ही यह आशय निकलता है। क्या मतलब? संस्कृत में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तथापि अर्थादेद आपद्यन्ते, इसका अर्थ है जी कि वो कहते सीधी गाथा में नहीं कही है, लेकिन जैसी भी कही है, जो हमने तुम्हें अर्थ निकाला है, जो गाथा में से ही निकल रहा है, ये अमरचंद ने अपनी तरफ से अलग लिख दिया है, ऐसा मत समझना। वो कहते ये अर्थ गाथा में से ही निकलता है। अब अपन ने कहा गाथा में से, देखो अभी जो अपन ने अर्थ पढ़ा था ना, पर आप पढ़ेंगे तो फर्क आएगा, शब्द तो वही के वही है, लेकिन आप आपके उपयोग में फर्क आएगा। देखो पढ़ते हैं गाथाओं का अर्थ, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, ये चार आश्रम भाव संग अर्थातु चेतन के विकार रूप भी हैं और असंग अर्थातु पुद्गल के विकार रूप भी हैं। जीव में उत्पन्न और अनेक भेदों वाले संग आश्रव अर्थातु भावाश्रव जीव के ही अनन्य परिणाम हैं। असंग आश्रव, अब जो संग आश्रव की बात खत्म हो गई एक गाथा में, अब दूसरे में असंग आश्रव अर्थात मिथ्यात्वादि द्रव्याश्रव ज्ञाना वर्णादि कर्मों के बंधन के कारण होते हैं, है ना, निमित्त होते हैं और उन मिथ्यात्वादि भावों के होने में राग देश करने वाला जीव निमित्त होता है। ये निमित्त के निमित्त अब इसमें से निकलेगा देवा, क्या वहां भी गए वास्तव में देव निमित्त पुराने द्रव्य कर्म के उदय और ये मतलब वही राग देश निमित्त होता है, तो दो निमित्त गिनाए तो गिनाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों ही परद्रव्य है ना, एक को उपादान कैसे कह दें, क्यों आप समझ गए ना, पुराने दिव्य कर्मों का उदय नहीं होता, ख्याल में आई ना, तो भी वो नहीं बनते नए और राग देश मोह नहीं होते तो भी नहीं बनते, तो दो ही निमित्त हो गए। तो कहते असली तो दिव्य वाले निमित्त हैं और उनके निमित्त तत्व के निमित्त हैं, इसलिए हम निमित्त भी कह देते हैं, निमित्त तत्व के निमित्त की अपेक्षा, जैसे रिश्तेदार के रिश्तेदार को भी रिश्तेदार कह देते हैं ना। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि हिंदुस्तान में की भाषा में एक बहुत बड़ी कमजोरी है और चाहे उसका विशिष्ट अर्थ है ऐसा समझ लो, क्या है कि अपने आप अपनी जो जिसकी शादी बहन की शादी जिससे हुई है वो बहन हुई और जिसकी बहन की शादी अपने से हुई है वो साला, ठीक है, और जिसकी बहन की शादी हमारे पिताजी से हुई है वो मामा, और पिताजी की बहन की शादी जिससे हुई है वो फूफा, चार हो गए। अब मैं एक प्रश्न करता हूं कि साले का साला कौन है और बहनोई का बहनोई कौन है और मामा का साला कौन है और बहनोई का बहनोई कौन है, बताओ कौन, बताओ शब्द बताओ मुझे भारतीय संस्कृति में। ये मारवाड़ियों के बस की बात नहीं है, क्यों कि इनके यहां तो एक शब्द है बस बेबाई, और जमाई एक जमाई और बाकी सब बेबाई, कुछ नहीं बाकी कुछ नहीं है, बेबाई माने कुछ नहीं, समझिए ना, एक अपने बुंदेलखंड में तो ऐसा नहीं है ना, तो क्या करते हैं अपन, साले की साले को साले, बहन भाई के बहन भाई को भी बहन भाई, ऐसा चलता है हमारे बुंदेलखंड में, क्या चलता क्या नहीं चलता, तो कहते नहीं, मामा के साले को भी मामा, अब फूफा के बहनोई को भी फूफा, ऐसा, लेकिन सही तो नहीं है ना, तो भाषा में शब्द होने चाहिए थे, तो भाषा की कमजोरी है तो हम क्या करें, अरे भाई साहब कमजोरी नहीं है, उसका कुछ विशिष्ट अर्थ है, कि क्या वैसे आप घड़ाना नहीं, मुझे मालूम है मैं सिर्फ 52 मिनट बोलता हूं, 52.5 मिनट, तो 52.5 मिनट में मैं खत्म करूंगा, आप कहें 52.5 मिनट का हिसाब क्या है, ऐसा है कि एक प्रवचन के मेरे 3 एपिसोड बनते हैं, टीवी पे जाता है ना, तो वो 17.5 मिनट में देता है, पैसे लेता है 20 मिनट के, देता है 18 मिनट, 18 मिनट में आगे पीछे जो शब्द निकल जाते हैं ना वे भी कट जाते हैं, तो 17.5 मिनट जाते हैं, 3 टुकड़े होंगे इसके, तो उतना तो मुझे करना है, आप चाहे जो कुछ करो उससे ज्यादा मैं करूंगा ही, क्या क्या बोल रहा था मैं आपको, उसके अंदर रहस्य क्या है, वो कहते भैया रिश्तेदारी ज्यादा मत बढ़ाओ, इतनी ही बहुत है, तुम्हें जितना परेशान होना है इसमें ही हो लोगे, ज्यादा संबंध अच्छे नहीं है, और अंग्रेज लोग हमसे भी आगे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने साले के लिए भी कोई शब्द नहीं रखा, बहनोई के लिए भी कोई शब्द नहीं रखा, माँ सास ससुर के लिए भी कोई शब्द नहीं रखा, अब अकेले बस 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 पति पत्नी ये दोनों शब्द हैं, हस्बैंड वाइफ, अब बोलो और कौन, बस अब बिदर इल्ला ए भाई कोई इल्ला इल्ला माने कानूनी, उन्हीं शब्दों से काम चलाते हैं, माने वे कहते असली रिश्तेदार हमारे नहीं है, उनको भी नहीं मानने को तैयार है, है ना। अब हम जबरदस्ती रिश्तेदारियां बढ़ाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। अध्यात्म के लिए अनुकूल है कि हम इन शब्दों से करें, तो वो कहते निमित्त और उपादान। अब ये बीच में जब पुराना कर्म निमित्त हो गया तो राग क्या करे, तो कहते निमित्त का निमित्त है। अब ऐसा ये साले का साला है और बेनोई का बेनोई है। देखो साले का साला बुंदेलखंडियों का उदाहरण पकड़ लो, साले का साला भी साला, ऐसे निमित्त तत्व का निमित्त भी निमित्त, ऐसा नहीं।